हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 42। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति ये सवे वेदे सांगपत कमोपनिषदि गायन्ति यम सामघा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 42। इन इस अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। वृषस्य नष्ट्रान्त्रीन् प्रादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसौदध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्। वृषस्य नष्ट्रान्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसौदध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्। वृषस्य नष्ट्रान्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसौदध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्। शब्दात् वृषस यानी बेल रूप का, बेल जो कि धर्म के रूप में बेल था ना, जो कि जिसकी तीन पैर कटे हुए थे। नष्टांश त्रीन पादान, नष्टांश में विनष्ट हो गए थे, त्रीन मना थ्री, पादान यानी पाओ को। कौन से थे वो? जो धर्म के तीन पैर कट चुके थे। तपः शौचम दयामिति, तपस्या किसके कारण कट गई थी? नशे के कारण, क्योंकि नशा मतलब धन जिनके पास बहुत ज्यादा था वो ये तीन काम कर रहे थे। नशा जहां पर हो रहा था जिसके कारण तीन उसका एक पैर कट गया था। शौचम यानी अवैध संघ के कारण पवित्रता नष्ट हो गई थी, और दया अर्थात अहंकार के कारण दया नष्ट हो गई थी। इति इस प्रकार प्रतिसौंधदे पुनः स्थापित किया। अब पुनः कैसे स्थापित किया? कि अब महाराजा परीक्षित जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि कलयुग को उन्होंने बोला आप इन जगहों पे रह सकते हो, और अपने पूरे जहां तक उनका राज्य था वहां से अगर कहीं पर बहुत ज्यादा धन के कारण, जैसे कि हमने कल पढ़ा कि जहां पर ज्यादा धन होगा, क्योंकि महाराजा परीक्षित ये जान गए थे कि जब कोई बहुत ज्यादा धनवान हो जाता है, जैसे हमने श्लोक नंबर 39 में पढ़ा, पुनश्च याचमानाय जात रूपम मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचम। कि महाराज परीक्षित जानते थे जहां जहां धन ज्यादा होगा, जहां ज्यादा सोना होता है वहां पर क्या हो जाता है? असत्य हो जाता है, यानी सत्य नष्ट हो जाता है, ठीक, क्योंकि जुआ खेला जाता है, मद शराब पिया जाता है धन के कारण। जो गरीब होंगे वो ये सारा काम नहीं कर सकते। कामम यानी कि विषय वासना के अंदर वो व्यक्ति जो है वो परिवृत हो जाता है, और वैरम च पंचमम, और इस तरह से सब एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। तो मेन काज जो है वो क्या है? गोल्ड यानी जिसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में धन है। तो फिर महाराजा परीक्षित ने क्या किया? प्रतिसौदद आश्वास्य, प्रतिसौदद इसका मतलब होता है पुनः स्थापित किया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि तीन पैर कट गए थे, कौन से? तपः शौचम दयामिति। अब धर्म जानता था कि यदि कलयुग का प्रभाव बढ़ गया तो मेरे ये तीन इस तरह से पांव कट जाएंगे, और उसका कारण सबसे पहले ज्यादा धन के कारण ये सब होगा। तो महाराजा परीक्षित ने क्या किया? प्रतिसौदध पुनः स्थापित किया आश्वास्य। और जब पुनः ये सब अधर्म नष्ट होकर पुनः धर्म का स्थापन हो गया, तो तो आश्वास्य महीम, महीम माना पृथ्वी, जो गौ माता रो रही थी ना, वो जो सोच रही थी कि अब तो कलयुग आ गया है और मेरे मेरे ऊपर इतना सारा अत्याचार होने वाला है, सारे लोग अपराध करेंगे और मैं इन अपराधों का बोझ नहीं सह पाऊंगी। तो इसके लिए अब जब महाराजा परीक्षित ने आश्वासन दिया, आश्वासन देकर महीम यानी पृथ्वी को समवर्धया यानी सुधार किया, अब महाराजा परीक्षित ने काफी इस दशा में सुधार उत्पन्न किया। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को जोड़ दिया और पृथ्वी को आश्वासन देकर उसकी दशा में काफी सुधार किए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक तरह से धोखा दिया। कली में धर्म बेल रूप तथा पृथ्वी गाय रूप की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके। मतलब महाराजा परीक्षित अंदाजा कर सकते थे कि अब कलयुग आ गया है तो हर जगह यह सब अपराध होने वाले हैं, जिसके कारण धर्म के पैर नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी जो है वो अबलाओं की तरह रोती फिरेगी। तो इसलिए उन्होंने जब ये अंदाजा लगा दिया कि अब कलयुग में ऐसा होने वाला है, अब उन्होंने क्या किया, अतएव उन्होंने बेल के तीन पांव को पुनः स्थापित करने के लिए तुरंत व्यवस्थता की। अब उन्होंने फौरन से ये सोचा कि मैं इन ऐसा नहीं होने दूंगा, ये धर्म के जो पेड़ हैं वो कटने नहीं दूंगा और उनको पुनः स्थापित करने के लिए व्यवस्थता की। कैसे की, ये पांव क्या थे, श्री प्रभुपाद जी बताते, ये पांव थे तपह स्वच्छता तथा दया, यानी तपस्या पवित्रता और दया, दया भाव करुणा, और विश्व भर के लोगों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने के लिए प्रयुक्त किया। अब उन्होंने क्या किया, जो भी सोना स्वर्ण भंडार यानी जो भी इकट्ठा किया हुआ उनका सोना था, वो उन्होंने सारे लोगों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए शुरू कर दिया। यानी देखो यहाँ पर, और विश्व भर के लोगों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व के, अब कोई भी अपराध नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि है ना, सब लोग का जो भी एक्स्ट्रा धन होगा वो सब भलाई के कामों में लग जाएगा। सोना निश्चित रूप से, अब अगर किसी के पास ज्यादा सोना होता है ना या ज्यादा धन होता है, तो निश्चित रूप से असत्य मद वैश्यावृत्ति शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देता है। जैसे हम पहले जानते हैं, पहले हमने पढ़ा कि ये सारा अपराध जो है वो अधिक धन के कारण होता है, कि हर अपराध जो यानी शराब पीना, वैश्यावृत्ति करना और हिंसा करना, ये सब ज्यादा अधिक धन के कारण होता है। किंतु राजा या जननेता या ब्राह्मण या सन्यासी को समुचित के समुचित मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूपी बेल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दे रहे हैं कि यदि वही सोना हम अपनी इच्छा, अपनी काम इच्छा को पूरा करने के लिए यूज करेंगे, तो फिर हर जगह पर असत्य, शराब और वेश्यावृत्ति स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वही सोना यदि हम ब्राह्मण और सन्यासियों की या गुरु के मार्गदर्शन से जब उसको यूज करेंगे, तो वही सोना धर्म के जो पैर हैं लुप्त हो गए हैं, जो कट गए हैं, उनको पुनः स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। वही सोना जो है तपस्या, सोच, पवित्रता और दया को मतलब प्रयुक्त करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम मंदिर बना सकते हैं, ऐसे ऐसे एजुकेशन के केंद्र खुलवा सकते हैं जहां पर भागवत धर्म का प्रचार किया जाए, जो भक्त हैं उनको ऐसी सहूलतें दे सकते हैं कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार करें, अलग अलग पुस्तक जो है ये जो बुक्स हैं वो प्रिंट करके उनको बहुत सारी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्राचारिकों को बढ़ा सकते हैं, ब्राह्मणों को इस तरह से शिक्षित करा जाए, ब्राह्मण दूसरों को शिक्षित कर सकें, उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि फिर इस तरह से जब बहुत ज्यादा भागवत धर्म का प्रचार होगा, आज हम सब अपराध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ये अपराध है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मांस आहार करना अपराध है या शराब पीना अपराध, उनको अपराध लगता नहीं है। इसका कारण उनकी अज्ञानता हो सकती है और प्रचार की कमी हो सकती है, क्योंकि अगर प्रचार इतना तीव्रता से हो रहा हो, शास्त्र इतना हम गंभीरता से सुन रहे हो, या प्रचारक इतने अच्छे तरीके से प्रचार करेंगे ना, तो फिर जो आम जनता है वो अपराध करने से पहले 100 दफा सोचेगी। लेकिन आज क्योंकि प्रचारकों को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, वो बेचारे इतना अच्छे तरीके से प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं, भागवत धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से या राज्य की तरफ से उनको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन जब महाराजा परीक्षित ने देखा कि अब इन धर्म के 3 पैरों को पुनः स्थापित करना है, तो जैसी गुरु और ब्राह्मणों ने हमें शिक्षा दी है, उसी के अनुसार यदि हम अपने धन को खर्च करेंगे, हमारा जो एक्स्ट्रा धन होगा वो यदि भगवत कार्यों में दिया जाएगा, भगवान के प्रचार के लिए दिया जाएगा, तो हर जगह पर प्रचार होगा और ये जो अपराध है वो समाप्त हो जाएंगे। इसी बात को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किंतु राजा या जननेता या ब्राह्मण या फिर सन्यासी के समुचित मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूपी बेल की लुप्त पांव को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की भांति कली की तुष्टि के लिए रखे सारे अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवत के उपदेशानुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में लगा दिया। महाराजा परीक्षित की जय। वास्तव में महाराजा परीक्षित एक बहुत ही पवित्र राजा ऋषि थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि कलयुग का आगमन हो गया है, और कलयुग का जो है वो सबसे बड़ा धर्म क्या है, कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है संकीर्तन यज्ञ। तो उन्होंने जितना भी अपने पितामह अर्जुन की बात है, अर्जुन ने अपने जीवन को जो है वो भगवान की सेवा में समर्पित किया और हमें भगवत गीता प्रदान की। अर्जुन के कारण हमें भगवत गीता प्राप्त हुई है, और उन्हीं की तरह आज परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, जितना भी अवैध सोने जो एकत्रित हुआ था, जो राज्य में जितना भी सोना था जिन जिन के पास, वो सब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के उपदेश अनुसार, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में क्या उपदेश दिया गया है कि यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजन्ति ही सुमेधसा, कि कलयुग में जो बहुत ज्यादा मेधावी होंगे, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, वो क्या करेंगे, संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे, संकीर्तन यज्ञ करेंगे, जिसके कारण जो है वो भगवान को प्रसन्न करके अपराधों से, अपराधों के इस कलयुग के प्रभावों से मुक्त हुआ जा सकता है। इसका मतलब, संकीर्तन का क्या मतलब होता है, भगवान की कीर्ति गाना। अब संकीर्तन 2 तरह से होता है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, एक तो हम इंस्ट्रूमेंट जैसे मृदंग, कृताल और ये सब नाल इत्यादि को बजा के फिर संकीर्तन करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, और दूसरा जो भागवत कथा होती है, जो भगवान की कीर्ति का या यश का बखान होता है, वो भी संकीर्तन यज्ञ होता है। तो महाराजा परीक्षित ने अपने सारे राज्य में संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ करने लगे, जैसा कि पहले सुझाव दिया जा चुका है, वितरण के लिए संचित धन के 3 भाग करने चाहिए। अब श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हम इस कलयुग के दुष्प्रभावों से बचें, तो फिर जो हमारा धन होता है उसके 3 हिस्से करने चाहिए। एक तो 50% जो है वो भगवान की सेवा में होना चाहिए, यानी जितना हम हमारा जो धन होता है उसमें से 50% भगवान की सेवा में होना चाहिए, और 25% यानी 25% जो है वो परिवार वालों के लिए
यानी परिवार वालों को जो अन्न या फिर वस्त्र इत्यादि जो है उनके लिए, और 25% निजी आवश्यकताओं के लिए रखना चाहिए। अपने जैसे कभी कोई बीमार वगैरह हो जाए तो अपनी पर्सनल यूज के लिए 25% रखना चाहिए। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन है। यानी कि अगर वास्तव में आप जानते हो कि मनुष्य कोई करुणा है तो वो क्या है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हम किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी को टेबलेट्स लेकर दे दें, किसी का विवाह करा दें, किसी को क्या, उससे इतना ज्यादा उनका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि एक दिन आप खाना खिलाओगे, दूसरे दिन वो पुनः भूखा रह जाएगा, उसको फिर चाहिए होगा। एक दिन आप किसी को कपड़े लेके दोगे, दूसरे दिन उसको चाहिए होंगे। एक किसी को टेबलेट लेके दोगे, वापस से बीमार होगा, कब तक करोगे। एक ऐसा काम करो जिससे उसकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। लेकिन अगर संकीर्तन यज्ञ किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागवत धर्म की शिक्षा दी जाती है, भगवान के प्रति उनके प्रेम को जागृत किया जाता है, उनको नाम जप करने के लिए प्रेरित किया जाता है और शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, फिर वो अपराध नहीं करेंगे। क्योंकि आज वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पहले अपराध किए हैं, जिस अपराधों के दंड के कारण उनको दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन यदि भागवत धर्म का प्रचार होता है तो फिर जीवों के एक तो पुराने अपराध जो है वो नष्ट होंगे, क्योंकि वो भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे। शास्त्र कहता है कि भगवान के एक नाम जप करने से आपके इतने अपराध नाश हो जाते हैं जितने कि आप कर ही नहीं सकते। तो इतने सारे उन्होंने पहले जन्मों में जो अपराध किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और पुनः वो आगे अपराध करेंगे नहीं। तो इसका मतलब है उनके सारे कष्ट जो है वो मूलतः जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो यदि कोई वास्तविक करुणा है जीवों के प्रति, यदि कोई करुणा है तो वो क्या है कि जीवों को भागवत धर्म का प्रचार करा जाए, और आध्यात्मिक ज्ञान के इस प्रसार से जो हम जो लोगों को जागृति प्रदान करेंगे, जो भगवान के प्रति उनके हृदय के अंदर जो कृष्ण प्रेम सोया हुआ है उसको जब हम जागृति प्रदान करेंगे, उसको जगाएंगे, तो ये मानव के लिए सबसे बड़ी करुणा है। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेषतया भगवत भक्त के विषय में अंधकार में रहते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं लोगों के सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में बिल्कुल अंधे हैं, अंधकार में रहते हैं। आज देखिए हम बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, केवल मेरा ये शरीर कैसे सुखी रहे, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करूं, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करूं, केवल यह शरीर ही केंद्र बिंदु है कि इस शरीर को कैसे सुखी रखूं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के विशिष्ट जो भगवत भक्ति है, अगर वो मतलब आध्यात्मिक की ओर जाते भी हैं तो उनको क्या लगता है कि देवताओं की पूजा करें, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में यहाँ संसार में आनंद नहीं है, स्वर्ग के लिए हम लोग अच्छा काम करेंगे। लेकिन भगवत भक्ति के विषय में सब अंधकार में है। अतएव भक्त के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए शिक्षा दी जाएगी तो निश्चय ही तपस्या, स्वच्छता तथा दया स्वतः उत्पन्न होंगे। अब श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को यदि भक्ति का प्रचार किया जाए, सब यदि भक्त बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भक्त जो होते हैं ना, उनको खुद ब खुद जो इतना ज्यादा है ना, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, जो कथाओं को श्रवण करते हैं, भागवत धर्म का पालन करते हैं, वो जितना भी कमाते हैं, जो भी करते हैं, वो यही सोचते हैं कि हम कैसे इसको भगवान की सेवा में या भगवत भक्ति के प्रचार में हम किस तरह से लगाएं। तो जो भी धन होता, अगर सारे लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार हुआ हो, ज्यादा लोग यदि भक्त बनेंगे तो भक्त लोग क्या करेंगे, अपना ज्यादा से ज्यादा धन किस में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। और इस तरह से और भी भक्ति का प्रचार होगा, और भी भक्त बनेंगे, तो फिर जितने जितने भक्त बनते जाएंगे तो अपराध नष्ट होते जाएंगे, है ना। भक्त लोग तो भगवान, क्योंकि उनका हृदय पवित्र होगा। आज हमसे अपराध इसलिए हो रहे हैं कि हृदय पवित्र नहीं है, नाम जप करते नहीं है, तो धन को देख कर अपराध करने की इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन जब भक्त बन जाते हैं, नाम जप करते हैं, तो जितना भी धन अर्जित होता है तो फिर धन को देख कर हमें और भी लगता है, अब इस धन को कैसे मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, कैसे और भी भगवान के प्रचार को बढ़ाऊं, कैसे मैं भगवान की भक्ति को बढ़ाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवत ज्ञान प्रदान करूं। तो फिर क्या होता है, जब धन जो है वो भगवत भक्ति के प्रसार हेतु अर्पित किया जाता है तो, और इस तरह से शिक्षा दी जाती है, तो निश्चित ही क्या होता है, तपस्या, स्वच्छता, दया स्वतः उत्पन्न होंगे। क्योंकि जितने ज्यादा भक्त बनेंगे उतने ही ज्यादा धर्म जो है उसके पेड़ जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति में आने की पहली शर्त यही है, हमको श्री प्रभुपाद जी ने जो चार नियम का पालन करने के लिए बोला है, क्या करना है, मांसाहार नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, और अवैध संग नहीं करना है, और जुआ नहीं खेलना है। तो ये असत्य के जो ये चार अधर्म के जो पेड़ हैं, इनको काटेंगे तो धर्म स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि तीन पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे, जब पर्याप्त तपस्या, स्वच्छता, दया तथा शक्ति होंगे तो पृथ्वी माता पूर्णतया संतुष्ट हो जाएगी। धर्म सही हो जाएगा, अधर्म समाप्त हो जाएगा, तो फिर पृथ्वी जो है वो आनंदित हो जाएगी। आज पृथ्वी दुखी क्यों है, क्योंकि अधर्म बढ़ गया है और धर्म नाश हो रहा है। लेकिन अगर पृथ्वी को आनंदित करना है तो बस धर्म को बढ़ाना है। तो इस तरह से क्या होगा, जब तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य होंगे तो पृथ्वी माता पूर्णतया संतुष्ट हो जाएगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई भी अवसर प्राप्त नहीं होगा। यदि भक्ति का प्रचार होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग भक्त बनते हैं, तो फिर कलयुग को हमारे समाज में आने के लिए कोई चांस नहीं मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भक्ति का प्रचार करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम धर्म को सुरक्षित रखें, पृथ्वी को संतुष्ट रखें, तो इसका सबसे सही और आसान तरीका ये है कि भक्ति का प्रचार करना है, संकीर्तन यज्ञ करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागवत धर्म की शिक्षा देनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवत भक्ति की शिक्षा देनी है। अब जैसे जैसे जीव भक्ति में आ जाता है तो अपराध स्वतः नष्ट होते जाते हैं। अपराधों को एक एक करके नष्ट करना संभव नहीं। आज हम देखते हैं हर जगह हर कोने में अपराध हो रहा है। इसका कारण ये है कि लोगों के हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति भय नहीं है कि हमें इतना ज्यादा इस अपराध का इतना बड़ा दंड भी मिल सकता है। शास्त्रों की शिक्षा नहीं है, नरक के विषय में किसी को पता नहीं है, और यदि है तो फिर उनको विश्वास नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि भगवत भक्ति का ज्यादा प्रचार नहीं है। तो हम सबको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ का प्रसार करना चाहिए। इसी बात को श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 में बहुत ही सुंदर रीति से बताया गया है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। यस्यास्ति भक्तिर्, यदि किसी के अंदर भक्ति हो जाती है, और साफ साफ बता दिया कि भक्ति किसी देवता की नहीं, भक्ति किसी पितृ की नहीं, भक्ति किसी संत की नहीं, भक्तिर् भगवत्य किंचना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति यदि किसी के मन में उत्पन्न हो जाती है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत् किंचना, किंचना थोड़ी सी भी भक्ति यदि आ जाएगी उसके हृदय में, वो भक्ति जो अहितुकी हो। ऐसा नहीं भगवान की भक्ति करूं तो ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, नहीं, भगवान की अकिंचना भक्ति यदि किसी के मन में उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है, सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। सुरा कहते हैं देवताओं को, देवताओं के सारे गुण जो हैं उसके अंदर आके समाविष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति प्राप्त होती है। और अगर कोई
हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा, अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता तो शास्त्र कहता उसके अंदर कुतो महत गुणा आएगी कहाँ से। गुण जो है, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो भगवान की संपत्ति है। जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो वो सारे गुण जो है वो हमारे अंदर आते हैं। लेकिन आप भगवान के संपर्क में नहीं आ रहे हो, माया के संपर्क में रहकर कुतो महत गुणा। हराव भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो अच्छे गुण आना संभव नहीं है, क्योंकि वो तो खाली क्या करेगा, मनोरथे न सते धावनो भा, कि वो तो सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही मानसिक धरातल पर मंडरा रहा होगा। मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, और प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो उसकी बुद्धि में और भी ज्यादा अपराध करने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो शास्त्र ने कह दिया हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा, जो अभक्त होगा भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो उसके अंदर शुद्ध गुण आ नहीं सकते। फिर तो वो वही करेगा, क्या करेगा, मांसाहार करना, शराब पीना, काम इच्छा पूरी करना, वेश्यागमन करना, यानी अधर्म के सारे काम करेगा और धर्म को नष्ट करता रहेगा। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि धर्म जो है वो सुरक्षित हो तो हमें भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।